ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। पहलगाम आतंकी हमले के परिदृश्य में एक अन्य कड़ा कदम उठाते हुए भारत ने चेनाब नदी के बगलिहार बांध से पाकिस्तान को पानी का प्रवाह रोक दिया है। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया कि सिंधु नदी से पानी के प्रवाह को रोकने संबंधी निर्णय के बाद बगलिहार बांध से पाकिस्तान को जाने वाले पानी के प्रवाह को भी भारत ने रोक दिया है। भारत अब झेलम नदी के किशनगंगा बांध पर भी इसी प्रकार का कदम उठाने की योजना बना रहा है। उत्तर कश्मीर के किशनगंगा बांध और जम्मू संभाग के रामबन जिले में जल विद्युत बांध बगलिहार भारत को जल प्रवाह के समय को नियंत्रित करने की क्षमता प्रदान करता है। पहलगाम के बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों और नागरिकों के मारे जाने के बाद भारत ने दशकों पुरानी सिंधु जल संधि को रद्द करने का निर्णय लिया है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात की। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल, नौसेना प्रमुख एडमिरल तथा सेना प्रमुख जनरल के साथ भी अलग अलग बैठकें की। ये बैठकें पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर हुई हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। श्री पुतिन ने निर्दोष लोगों की मौत पर संवेदना व्यक्त की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को पूरा समर्थन देने की बात कही। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने भारत और रूस के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और बढ़ाने पर प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री ने विजय दिवस की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर राष्ट्रपति पुतिन को शुभकामनाएं दी और उन्हें इस साल के अंत में भारत में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया। सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के संवैधानिक वैधता से संबंधित मामले को इस महीने की 15 तारीख के लिए सूचीबद्ध किया है। पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार ने न्यायालय द्वारा कुछ चिंताएं व्यक्त किए जाने के बाद संशोधन अधिनियम के कुछ विवादास्पद प्रावधानों पर रोक लगाने का निर्णय लिया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज तेलंगाना के सिरपुर कागजनगर में 3,900 करोड़ रुपए की लागत की कई सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर श्री नितिन गडकरी ने राज्य में सड़क बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाने की केंद्र की वचनबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि आने वाले 3-4 वर्ष में तेलंगाना में 2,00,000 करोड़ रुपए की लागत से राजमार्ग परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इन परियोजनाओं से कोठागुडेम और मुलुगु जैसे दूरदराज के जिलों से हैदराबाद तक तीव्र संपर्क स्थापित हो सकेगा।
राज्य का ट्राइबल जिला मुलुगु हो या कोठागुड़म, चाहे जिला आदिलाबाद हो या गढ़वाल राज्य के किसी कोने से हैदराबाद आना और जाना अब बहुत जल्दी आसान हो जाएगा। हमारी सरकार ने पूरी तेलंगाना में राष्ट्रीय राजमार्गों को काफी बढ़िया प्लानिंग करके जाल बिछाने की कोशिश की है।
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने कनाडा स्थित खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला से जुड़े 2024 नीमराना होटल फायरिंग मामले की जांच के लिए राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में 10 स्थानों पर छापेमारी की। अभिकरण की जांच में पता चला है कि डल्ला के सहयोगी प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठनों के लिए धन उगाहने के लिए आतंक और हिंसा का इस्तेमाल करते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2025 के दौरान फेस ऑथेंटिकेशन यानी चेहरे से पहचान के उपयोग पर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट सफलतापूर्वक आयोजित किया। पीओसी का उद्देश्य देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा में छात्रों की पहचान सत्यापित करने के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन की व्यवहार्यता और प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना है। बांग्लादेश में चटगांव की एक अदालत ने आज इस्कॉन के पूर्व प्रमुख और बांग्लादेश सम्मिलितो सनातनी जागरण जोत के प्रवक्ता चिन्मय दास ब्रह्मचारी के वकील सैफुल इस्लाम की हत्या के मामले में गिरफ्तार दिखाने का आदेश दिया है। चिन्मय दास देशद्रोह के एक मामले में 5 महीने से इस समय जेल में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्मश्री पुरस्कार विजेता केवी राबिया के निधन पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका साहस और दृढ़ संकल्प, विशेष रूप से जिस तरह से उन्होंने पोलियो से लड़ाई लड़ी, वो बहुत प्रेरणादायक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दूसरे दिन कबड्डी, तीरंदाजी और गतका के मुकाबले खेले गए। बेगूसराय में लड़कियों के फुटबॉल में तमिलनाडु ने बिहार को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।